ओम शांति। आज हमें प्यारे साकार बाबा के साथ के अनुभव सुनाने के लिए कहा गया, क्योंकि हम अपना परम सौभाग्य समझते हूँ कि बाबा ने छोटेपन में ही अपना बनाया और उसमें भी विशेष करके बाबा के अंग संग रहने का, मधुबन निवासी होकर के रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मेरे अनुभव में तो ये भी आया, जैसे बाबा के साथ हमारे सर्व संबंध हैं, माता पिता, शिक्षक, सतगुरु, सखा, वो भी सब हमने अनुभव पाए। साथ साथ मैंने ये भी अनुभव किया, बाबा हमारे न केवल रूहानी सर्जन पर स्थूल में भी बाबा ने सर्जन का कार्य किया। फिर ये भी अनुभव किया कि बाबा भले कहते हैं कि मैं अंतर्यामी नहीं, मैं एक एक केस को नहीं जानता, परंतु बाबा वास्तव में हर एक की जन्म पत्री को जरूर जानते थे। यूं मैं कहूं, बाबा एक भृगु ऋषि थे जो जन्म पत्री को जानने वाले, जन्म पत्र लिखने वाले भी थे। ऐसे हमारे जीवन में काफी अनुभव आए। जब 1956 में हमने ज्ञान लिया करनाल में हमारी आदरणीय मनोहर दादी जी के द्वारा, मात्र केवल दादी जी को 3 दिन आए हुआ था, उसी समय हम भी पहुंच गए। परंतु एक जीवन का अनुभव ये रहा कि जब हम छोटी थी, केवल 5 वर्ष की, ये ज्ञान से पहले की बात है, जब 1947 में पार्टीशन हुआ, तो उस समय में काफी छोटी उम्र में वो सीन प्रैक्टिकल देखने को मिला, क्योंकि हमारे परिवार में जो हमारी फैमिली थी, हमारे दादाजी थे, वो एक पूरे गांव के मुखिया थे, ना एक गांव के पर कई गांव के थे, तो काफी नामी ग्रामी परिवार थे, धन में, मान में, इज्जत में, सब रीति से ऊंचे परिवार के थे। परंतु जब एक पार्टीशन हुआ, उस समय ऐसी घटना हुई, केवल 2 घंटों के अंदर परिवार के 14 सदस्य समाप्त हुए, और वो दृश्य मैंने अपनी आंखों से देखा। तो आप सोच सकते हो कि एक छोटी बच्ची उस समय अगर वो ऐसे दृश्य देखती है तो उसके मन के ऊपर क्या नहीं प्रभाव होगा। तो उस समय का वो प्रभाव रहा जो हम बीमार हो गए। काफी समय हमारा बीमारी के अंदर गया, पर मैं मात्र जब 14 वर्ष की थी उस समय हमको ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो उस समय कुछ मालूम भी नहीं था कि ऐसे यज्ञ में रहा जा सकता है, परंतु एक दिल का उमंग ऐसा था। वो भी एक विचित्र घटना थी कि जिस समय पहले पहले मनोहर दादी जी को दूर से आते देखा, कि दादी एक जगह रहते थे, एक जगह क्लास कराने आते थे, तो एक उस समय की जो फीलिंग थी वो एक ऐसी थी, ऐसे लगी इनको मैंने कहीं देखा है। फिर लगे मैं तो इनके साथ सदन रही हूँ, ये मेरे अपने, और फैसला कर लिया कि मुझे इन जैसा बनना है केवल देखने से। वो एक उनका जो प्रभाव था, वो वाइब्रेशन थे, उसने मन को बदल डाला। ज्ञान बाद में सुना, और उससे कर्ण का फैसला था। जिसको कहा जाता है कि जाटकू बाबा कहते हैं ना, उस समय की हमारी वो स्थिति बनी। फिर कोर्स किया, रोज क्लास करने लगे। मैंने बाबा को पत्र लिखा, बाबा मैं यज्ञ में रह करके ये सेवा करना चाहती हूँ। पत्र लेकर के दादी के पास गई कि ये मेरा बाबा को भेजो। तब दादी ने बैठ के पूरी हिस्ट्री सुनी, क्योंकि शारीरिक रूप से वे बहुत वीक थी, बीमारी हालत में आप सोच सकते हो। नहीं तो पहले जब छोटी थी तो सब शेर की बच्ची कहते थे, मोटी लाल ताजी, पर वो जो झटका लगा था मन को, उसके कारण एकदम वीक हो गई थी। तो दादी जी ने पूरी हिस्ट्री पूछी, तो दादी ने क्या किया, मेरे पत्र के साथ वो पूरी हिस्ट्री भी लिख डाली, बीमार है वो भी लिख दिया। अब आप सोचो, बिना देखे बीमार सुनने के बाद कौन लेगा। पर एक बाबा जानी जाननहार, हर एक की कर्मों की गति को जानने वाला, भाग्य को जानने वाला, आज पत्र गया बराबर 7 दिन में। बाबा का लाल पेंसिल से लिखा पत्र बाबा के हस्तों का पहुंच गया। क्या सुंदर उसके अंदर बाबा के माँ वाक्य थे। बच्ची का पत्र पाया, आज भी मुझे वो लाइनें याद है। बच्ची यज्ञ में रह सकती है अगर बच्ची बीमार है, उसका इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है। कहां के लिए बोला, बच्ची अगर बीमार है तो उसका इलाज दिल्ली में कराया जा सकता है, बशर्ते पहले माँ से मिले। माँ माना जगदम्बा सरस्वती माँ के लिए था। वो भी एक काफी स्थिति, कैसे आकर्षण रहा, ये रहा। उसके बाद बाबा स्वप्न में मुझे बुलाता था, आवाज देता था, बच्ची आओ आओ। बहुत अनुभव हो रहे जीवन के। बस थोड़े ही दिन के बाद मम्मा बाबा दोनों दिल्ली पहुंच गए, तो हम बाबा से मिलने गए। बाबा से मिले, मम्मा से मिले, बाबा की दृष्टि मिली, पर वो एक चमत्कार था उस समय का। पहला तो प्रातः क्लास हुई, बाबा के चैम्बर में हम बैठते थे, मुरली के बाद रोज कमरे में बाबा के सभी बच्चे जो करीब वाले होते थे चले जाते थे, उसको हम चैम्बर बोलते थे। उस समय बाबा से पारिवारिक रीति से बातचीत करते थे। तो अचानक बाबा ने आह्वान किया, आज जो बच्चियां बाबा की सेवा में लगना चाहती हूँ वो बाबा की गोद में आए। आह्वान डायरेक्ट। उस समय मुझे याद है, हम 3 कन्याएं बाबा की गोद में गई, एक मैं, एक आगरा की विमला बहन और एक और थी, कोई दूसरी थी, वो गई दुनिया में। विमला बहन और हम तो दोनों सेवा में है। उस समय का वो वातावरण था, बाबा ने गोद में लिया, सबने तालियां बजाई। बाबा ने उस समय पेड़े दूध के मंगा करके पूरे सबको बांटे, सबने खुशी प्रकट की, आज बाबा को 3 बच्चियां मिली। उस समय 3 की बहुत वैल्यू थी, आज तो सैकड़ों का समर्पण होता है। ये समय हमारा वही समर्पण था। आज के समय के रीति से विधि नहीं थी, बस बाबा ने आह्वान किया, बाबा की गोद में चले गए। और दूसरी चीज के बाद हम एक रात भी आज तक कभी लौकी घर कभी नहीं रहे, ना लौकी घर का कभी खाया होगा। बस बाबा के थे, बाबा के है, यही संसार अपना, यही परिवार अपना। गीत भी हम गाते थे, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। वो एक नारायणी नशा था। दूसरी चीज, उस समय जब हमें खुशी मिली तो हमारे दिल का गीत था, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कराना सिखा दिया, दिल का वास्ता। और विशेष जो बात कहने जा रही थी कि बाबा सर्जन का कार्य किया, आप पत्र की लाइन ध्यान देंगे तो दिल्ली में बच्चे का इलाज कराया जा सकता है। हमें नहीं मालूम था किसके डॉक्टर के लिए बोला बाबा ने, पर वो जो बाबा की दृष्टि पड़ी, मम्मा की दृष्टि पड़ी, बस वो दृष्टि ने हमारे को ठीक कर दिया। जितनी दवाइयां, जितनी परहेज थी, सब समाप्त हुई और तबियत में इम्प्रूवमेंट होती गई। अब आप सोचिए, ये बाबा का निरोगी भव का वरदान नहीं तो क्या था, जो दवाइयां खा के भी हम बीमार थे या दवाइयां छोड़ के हम ठीक हो गए। फिर इसके बाद तब से हम सेंटर पर रहे, बताया लौकी घर कभी नहीं गए। अब इसके बाद बाबा के पत्र मनोहर दादी थे, गोपी दादी थे, उनके पास आते थे। बाबा सिंधी में लिखते थे तो हम पढ़ सकते नहीं थे, दादी पढ़ के सुनाते थे। तो एक मन में इच्छा उठी, मैं अगर बाबा की बच्ची हूं तो मैं बाबा का पत्र नहीं पढ़ सकी तो मैंने बच्ची बन के क्या किया। उस बाबा का पत्र पढ़ सकूं, इस लगन के कारण मैंने सिंधी पढ़ना सीखा। बाबा के पत्र आए, खुद पढ़ते थे। मम्मा तो पंजाबी में लिखती थी, बाबा सिंधी में लिखते थे। अब ये मैं कहूंगी कि वो जो एक मन में लगन रही, बाबा के पत्र पढ़ने के कारण सिंधी सीखी, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी गिफ्ट भी रही, तो मेरी जीवन में एक लिफ्ट भी रही, वो भी मैंने अनुभव किया। और जीवन में एक ये पाठ पक्का किया शुरू से, जो बड़ों की आज्ञा कभी ना नहीं करनी, कभी ना नहीं करनी, कभी कोई चीज की डिमांड नहीं करनी। डिमांड करेंगे नहीं पूरी होगी तो दुखी होंगे, ना करेंगे तो बाबा के बच्चे बन करके ना करने का कोई अर्थ नहीं। और हमने देखा जो सदा हां जी करता है उसको आगे बढ़ने की चांस भी मिलते रहते हैं। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ, मधुबन में आए थे तो उस समय में आज की तरह नहीं था, चार पांच दिन रहो और जाओ, आने की डेट जाने की डेट फिक्स। उस समय तो और ही, हमारी दादियां कहती थी मधुबन जाना मना पीहर जाना, पीहर में लड़की जाती है तो आराम से वहां रहती है, जल्दी वापस नहीं आती है। तो महीना, सवा महीना, डेढ़ महीना, इतना जो भी पार्टी आती थी वो मधुबन में रहती थी। तो हम भी ऐसे इतना समय रही, वापस जाने की टिकट है दूसरे दिन की। तो शाम को अचानक बाबा ने बुलाया, ऑफिस में बैठे थे और बड़ी दीदी साथ बैठी, कोई बहाने से दीदी ने मेरे से चार छह दिन पहले कोई मैटर लिखवाया था, पर ये नहीं बताया था क्यों। वो शायद मेरी राइटिंग देखना चाहते थे, कुछ मैटर का लिख दो, मैंने लिख दिया। पर ये तो बाद में भेद खुला कि क्यों लिखवाया, राइटिंग देखनी थी। फिर बाबा ने कहा बच्ची मधुबन में रहोगे, मैंने कहा जी बाबा। अच्छा दीदी बच्चे की टिकट कैंसिल करा दो, मैंने नहीं पूछा बाबा क्यों, क्या कार्य है, बाबा ने आज्ञा दी है, ओके रहे। फिर बाबा ने कहा कि एक भाई था उस समय में, ये जगदीश भाई नहीं, हमारे दूसरा था जगदीश, उसको भी वो सिंधी और हिंदी दोनों भाषा जानता था, क्योंकि बाबा मुरली चलाते थे, यशु दादी नोट्स लिखती थी, फिर उसके बाद उसको फेयर करते थे, फिर हिंदी मुरली लिखनी होती थी। तो वो लिखते थे तो उनको कोई काम से बाहर जाना पड़ा, बाबा से छुट्टी ली थी, तो इसलिए भी था कि कौन लिखे। उसके बाद मैं थी जिसको दो भाषा आती थी, सीखी तो बाबा का पत्र पढ़ने के लिए, पर ये मेरे लिए लिफ्ट गिफ्ट बनेगी मुझे मालूम नहीं था, पर उस समय सिद्ध हुआ। तो कहा बच्ची वो जगदीश बच्चा चाह रहा है आप जो है ना मुरलिया लिखो। मैंने कहा जी बाबा। उस दिन से हाथ से स्टेंचर काटना शुरू किया और हम मुरलिया लिखती थी, उन्हें यशु दादी के नोट्स पढ़ करके और हिंदी में लिखना, और लिखने के बाद फिर सैक्लोस्टाइन हमारे जमुना प्रसाद भाई करते और मुरलिया जाती थी। फिर कुछ समय पड़ा तो बाबा ने बुलाया, क्योंकि हमने ये देखा बाबा हमको बहुत अधिकार से बुलाता था, बहुत मतलब बहुत, कोई भी बात बची धारा। तो कहा बच्ची सिंधी लिखना आता है? मैंने कहा बाबा पढ़ तो लेते, लिखने की प्रैक्टिस नहीं है, अगर बच्ची नहीं सीखेगी तो बाबा कहेगा या तो शौक नहीं है या तो कहेगा बुद्धू बुद्धू हो स्टेट। मैंने कहा बाबा मैं सीखूंगी। तो मैंने जाके दादा विश्वरतन को बोला, दादा विश्वरतन ने हमको बहुत हर बात में आगे बढ़ने के लिए बहुत सहयोग दिया। तो कहा ठीक है मैं लिखना सिखाता हूँ। तो क्योंकि हिंदी ऐसे लिखते हैं सिंधी उल्टी लिखनी पड़ती है उर्दू की तरह से, तो वो प्रैक्टिस कराई, फिर बाबा को लिख के दिखाया दो तीन दिन में ही। अच्छा बच्ची हिंदी तो मुरली लिख के अभी सिंधी भी लिखो, क्योंकि सिंधी मुरलियां भी जाती थी, तब से वो ड्यूटी मिल गई, तो वो लिखना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा और आगे बढ़े और फिर बाबा ने वही ऑफिस में बैठे बुलाया, बच्ची टाइप सीखेंगी? मैंने कहा जी बाबा। अच्छा विश्वरतन बच्चे को बुलाओ। बुलाया दादा को तो कहते बच्चे इस बच्ची को ना टाइप सिखानी है, नई हिंदी टाइपराइटर आया था, पहली बार यज्ञ में आया था, पहले इंग्लिश था केवल पोर्टेबल, बाकी ये टाइप मशीन पहली पहली थी। तो बच्ची को टाइप सिखानी है, या तो मास्टर को घर में बुलाओ या इसको मास्टर के पास भेजो। कहा बाबा मैं घर में सिखा दूंगा। अच्छा कितने दिन में सिखाओगे? कहा बाबा 15 दिन में। मेरे को बाबा तो बच्ची सीख जाएगी? मैंने कहा जी बाबा, क्यों ना करने की आदत नहीं थी, अब कभी हाथ भी नहीं लगाया क्या होता है। पर हमने देखा एक बाबा की डायरेक्ट प्रेरणा थी, जहां बाबा की प्रेरणा है ना वहां सफलता ऐसे मिलती है, वो हमने अनुभव किया। तो आते जाते क्योंकि वही अपना पुराना ऑफिस था, ये हिस्ट्री हाल भी बना हुआ नहीं था, यहाँ तो टेंट लगा करते थे जो भाई लोग रुका करते थे यहाँ, तो यही अपना जो पुरानी बिल्डिंग है कवेलू वाली वहाँ हॉल था, बाजू में उसी में ऑफिस था, तो वहीं यशु दादी बैठती थी और बाबा भी वहीं बैठ के पत्र लिखते थे, एक टेबल पे टाइप मशीन थे, हम प्रैक्टिस करती थी और दादा विश्वरतन ने गाइड किया। तो आते जाते कब बाबा के बच्चे के लिए इनाम तैयार हो रहा है, फिर बोलते हैं एक बारी बच्ची क्या इनाम लोगी? मैंने कहा बाबा इतनी बड़ी विश्व की बादशाही दे रहे हो और क्या चाहिए। तो रात को बाबा ने आके क्लास में वो बात बता दी, मतलब बाबा बच्चों में उमंग भरता था ये हमने देखा। तो उस उमंग में हर एक कार्य सहज होता गया। तो रिजल्ट में ये हुआ, जो 9 दिन में हमने टाइप सीखी, स्पीड तो खैर बात बढ़ती है, एकदम तो नहीं बढ़ती है, पर फिर 10वें दिन सवेरे बाबा मुरली पूरी करके गए, फिर बाबा को टाइप किया हुआ दिखाया, अच्छा बच्चे आज से मुरली टाइप करो, तो 10वें दिन मुरली टाइप की। तो इस तरह से बाबा ने हमको मधुबन निवासी बनाया। फिर और आगे बढ़े, कुछ ना कुछ चांस मिलते रहे, जो फिर हमारी ड्यूटी थी बाबा की मुरली के पहले गीत बजता, आपने देखा होगा मुरली में कई बार गीत की लाइन लिख के आती है, तो वो ड्यूटी मेरी थी, यही जगह पर टेप रहती थी, और इधर मम्मा की संदली, इधर बाबा की संदली, और अम्मा टेप बजाती थी। तो उसके कारण हमको पंक्चुअल होना पड़ा, बाबा के पहले क्लास में हमें पहुंचना ही, क्योंकि बाबा जैसे बैठे वैसे टेप बज, मानो टेप नहीं थी वो रिकॉर्ड था, ग्रामोफोन रिकॉर्ड था, तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड की ड्यूटी थी। उसके कारण सवेरे हम अमृत वेले बाबा के पास जाती थी, बाबा आज कौन सा गीत बजाना है, तो अमृत वेले उठते तैयार हुए, पहली दृष्टि बाबा की हमको मिलती थी कि रोज बाबा के पास जाओ और क्या गीत बजाना है, फिर क्लास में आओ। फिर उस समय में बाबा की लहर थी, गीत जैसे शुरू होगा बाबा की, जैसे कहते हैं सागर उछल खाता है, वैसे उछल आती थी, इतना हल्का बाबा गर्दन का इशारा करते, मनो को वहां का वहां रिकॉर्ड बंद करना है, थोड़ा फिर बाबा मुरली चलाएगा, फिर कहेंगे अच्छा बच्ची बजाओ बाजा, फिर शुरू करो, फिर बाबा फिर रुक ऐसे इशारा करते, तो बहुत केयरफुली बैठना पड़ता था, तो इससे क्या हो गया एक्टिवनेस भी आ गई, बाबा का इशारा कैसे कैसे करना है वो भी हमारे को आ गया, तो ये भी बाबा की बहुत, माने जितने भी हमारे यहाँ ड्यूटी रही, जितने दिन रही बाबा के समीप अंग संग, कमरा भी था बाबा के सामने, कमरे में बाबा जाते थे तो मेरे कमरे से क्रॉस होके जाते थे, आते जाते बाबा का दर्शन, कमरे में बाबा क्या बात कर रहे हैं हम अपनी खटिया में बैठे भी सुनते थे, और मुझे बाबा के संग ही अपना समय बिताने को अच्छा लगता था, बाबा घर की शाम को खेलते थे तो भी हम बाबा के साथ, मतलब पूरा समय हमारा बाबा के साथ जाता था। फिर कुछ समय पड़ा, हमारी ईशु दादी जी मुरली लिखती थी, पोस्ट बाबा को सुनाती थी, क्योंकि हमारी ऑफिसर ईशु दादी थी, तो उनको टाइफाइड हो गया, वो भी 40 दिन का, अब यहाँ तो एक दिन भी मुरली मिस तो हो नहीं सकती, पोस्ट आते बाबा को ना सुनाए तो ये हो नहीं सकता, तो वो भी ड्यूटी बाबा ने हमारी लगाई, बच्ची ईशु बीमार है आपको मुरली के नोट्स लेने जी बाबा, पर बाबा बहुत फास्ट बोलते थे, और मुरली जानिए सारे सेंटरों पर एक शब्द भी मिस नहीं होना चाहिए उसमें, और इतना फास्ट बाबा बोलते थे, पूरा लिखो तो बड़ा पॉसिबल नहीं था। फिर विश्वरतन दादा को बताया, दादा क्या करना है, कहा मैं तुम्हें शॉर्ट हैंड सिखाता, और ये वास्तव में वहां से शॉर्ट हैंड में कुछ कुछ वर्ड आते हैं मुरली में, जैसे मिसाल मुक्ति जीवन मुक्ति पूरा लिखो कितना समय लगेगा, तो अभी MJM सत्युग SY कलयुग KY हो गया, अपनी बनाई, वो दादा विश्व रत्न ने हमको गाइड किया। तो वो 40 दिन जब तक ईशु दादी ठीक हो, मुरली का नोट्स लेना, फिर टाइप करना, फिर उसके बाद सिद्धी मुरली लिखना, और इसके अलावा दीदी यहाँ पर थी तो सिंधी पोस्ट आती थी, वो दीदी सुनाती थी बाबा को, पर हिंदी आए तो कौन सुनाए, वो भी हमारा नंबर लग गए, तो हिंदी पोस्ट आए वो भी बाबा को हम सुनाए। तो अब आप सोचिए कितना बाबा के अंग संग और कितना करीब रहे हो। फिर इसके बाद एक बार क्या हुआ कि यहाँ सर्दी तो बहुत होती थी और हम पंजाब से आए थे तो वूलन शॉल थी वो मेरे ही हाथ की बनी हुई थी तो वो मैंने ओढ़ी थी, मतलब वो शॉल बाबा के हाथ में आई। बाबा ने बुलाया, बच्ची ये शॉल किसने बनाई है? मैंने कहा मैंने बनाई है। अच्छा बच्ची बाबा को बना के देंगी? इनका जी बाबा, दीदी बैठे थे। अच्छा कितनी ऊन लगेगी? बताया बाबा को, दीदी इसको बोल दिल्ली से मंगा के दो, बच्ची बाबा को शॉल बना के देगी। आ गई जी फटाफट दिल्ली से बोल। अच्छा बच्ची शुरू करो। एक दिन हुआ था केवल बनाने शुरू किया, वही ऑफिस में वहां बैठे, स्केल वगैरह तो रहती थी, बच्ची इधर बुलाया, स्केल पट्टी लगाई, एक दिन में तुमने कितनी बनाई है? अच्छा कितनी लंबी होगी? मैंने कहा बाबा 2 गज होंगी। अच्छा इसका मतलब तू 15 दिन में बना लेगी। तो एक बाबा ने स्टैंप लगा दी, मैंने सुस्ती का नाम नहीं, 15 दिन में पूरी करके दे दिए और बना के दिए। बाबा को बहुत पसंद आई। फिर बाबा ने कहा स्वेटर बना के दो बाबा को। बाबा को स्वेटर बना के पहनाएंगी? बहुत पसंद आया बाबा को। अच्छा बाबा को टोपी बना के देंगी? जी बाबा, बाबा को टोपी बना के दी। फिर एक बार ऐसा मौका आया, जो बहन बाबा का भोजन बनाती थी ना उसकी तबीयत खराब हो गई। वहां मेरा नंबर, तो बाबा को भोजन बना के खिलाया। बाबा को बताते थे कि किसने बनाया, तो बाबा से फिर संतरी दादी खिलाती थी और हमारी ड्यूटी थी बनाने की। मैंने बाबा का एक बनाती थी केवल, तो पूछा बाबा से, बाबा पुष्पा ने खाना बनाया है, कैसा बना? बाबा ने सर्टिफिकेट दिया कि बहुत अच्छा बना। तो बाबा को खाना भी बना के खिलाया। अब बताओ इससे ज्यादा और क्या भाग्य चाहिए? हमारे जीवन में तो बाबा 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 ही था। फिर हम देखते थे बाबा घुमाने ले जाता था, रोज सवेरे मुरली पूरी होती, बाबा खुद घुमाने ले जाते थे। कभी बाबा पहाड़ी से ले जा रहा है, कभी बाबा रोड से ले जा रहा है, पर हम ये देखते थे बाबा इतने बुजुर्ग, हम लोग छोटे, हम पीछे रह जाते थे। बाबा ऊपर चढ़ के यहां से जाते थे तो बीच का एक रास्ता था पहाड़ी, बाबा आगे ऊपर पहुंच जाए और जाके बैठ जाते थे, आओ बच्चे आओ, आओ बच्चे आओ, बाबा ऊपर बैठे, हम दौड़े दौड़े जा रहे हैं। रोड से ले जाएगा, चेरी खिलाएगा। फिर मजा ये होता था कि अगर कोई गिर गया, चलते चलते गिर गया, आज इसकी टोली बंद। क्यों बाबा? एक तो बेचारा गिरा और ऊपर से टोली बंद। शिव बाबा को क्यों भूला? शिव बाबा को भूला है इसलिए गिरा। सर्टिफिकेट। तो बाबा घुमाने भी ले जाते थे तो बड़े उमंग उल्लास के साथ, और बरसात में तो बाबा को बड़ा मजा आता था। तेज बरसात अगर हुई ना, चलो बच्चे बाबा वाटरफॉल दिखाने चलता, रेन कोट छाते उठाओ पहनो चलो, न किले की तरह बाबा वाटरफॉल जाओ तो वहां दिखाने ले जाते थे। बाबा को वैसे तो घुमाने में मजा आता ही था, पर हमने देखा बरसात में भी बहुत मजा आता था, घूमते थे बाबा के साथ। मन बाबा से खेलना, बाबा से खाना, और कई बार बाबा ने अपने साथ भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। छोटी सी टेबल बाबा के रूम में रहती थी, 3 कुर्सियां होती थी, एक पर बाबा एक तरफ मम्मा और बीच में कभी किसको कब किसको निमंत्रण। तो बाबा के साथ एक टेबल पे भी खाना खाया। जो गायन में तुम्हें संग खाऊं, तुम्हें संग खेलूं, तुम्हें संग बोलूं, वो प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया। और दूसरा बाबा में ये रहता था बच्चे सीखे, पर ऐसे कभी बाबा ने नहीं कहा बच्चे ये काम सीखो। उमंग भरता था, उमंग भरने की युक्ति बाबा में बहुत अच्छी थी। एक बार की बात है, हम ऐसे छोटे छोटे, तब तो बहुत छोटे, मतलब 14 साल के तो ज्ञान में यज्ञ में ही आ गए थे। तो उस समय में हम 6-7 कन्याएं मुरलीपुरी भी बाबा के पास बता रहे चैम्बर में जाते थे, आगे बैठी थी हम सभी। उस समय में मधुबन में 250 भाई बहने थे। तो बाबा के पूछते हम बच्चियों से, बच्चियां आज आप खाना बनाओगे? हमने कहा जी बाबा बनाएंगे। बाबा ने बोला, खुशी में सबने बोल दिया, अच्छा आज आप बच्चियां बनाओ, मम्मा बाबा खिलाएंगे। और हम खुश, जैसे अपने हाँ बोली जाओ 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 बच्चे जाओ किचन में। हम सब दौड़े दौड़े भोली दादी के पास पहुंचे, आज हम खाना बनाएंगे, बाबा ने ऐसे बोला है। और वास्तविकता ये थी, हम जितनी कन्या थी खाना बनाने में 0 थी, किसी को नहीं आता था। पर हमारी मम्मा ने, मम्मा भी बैठी थी बाजू में जब ये बाबा ने प्रोग्राम दिया, तो उस दिन की मम्मा के जो प्रोग्राम थे मम्मा ने एक साइड रख दी। हम जैसे आए हमारे पीछे पीछे मम्मा किचन में आ गए। मम्मा को ये था कि भोजन अच्छा बनना चाहिए, कैच कर ले बच्चियों को, खाना बनाना आता नहीं होगा, जबकि खाना 250-250 लोगों का है और बाबा ने अपने हाथ से खिलाना। तो मम्मा ने पूरा समय जब तक हम भोजन नहीं बनाते मम्मा वहां खड़ी हो गई, हाथ हमारे थे, गाइडेंस मम्मा की थी। अभी इतना तेल डालो, अभी राई डालो, अभी जीरा डालो, इतना डालो नमक, इतना डालो, मनो हर बात मम्मा ने सिखाई। चावल कैसे धोवो, दाल कैसे धुलाई करो, यहाँ तक मम्मा ने सिखाया। और भोजन बहुत अच्छा बना, मम्मा की गाइडेंस थी। मैंने बाबा की भी बात रखी, हम बच्चों को भी सिखाया, मम्मा ने भी वो प्यार दिया। और उससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ गया कि हम अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते। तो ऐसा करके बाबा ने उमंग उत्साह बढ़ा दिया। और सचमुच बाबा मम्मा दोनों पूरे पतीले लेके बैठ गए और सब पता लगा बाबा मम्मा दे रहे हैं, सब फटाफट आ गए, आधे घंटे में भोजन पूरा हो गया करके। तो इस तरह से बाबा बच्चों में उमंग भरता था। और मैं उमंग की बात बताऊं, एक बारी उस समय की बात है जब केवल ये हिस्ट्री हाल ये बना था, आंगन हमारा पूरा कच्चा था, स्टोर अनाज का जो था वो केवल ये जो रतनबेन दादी का कमरा और मोइनी बहन वाला कमरा, बस वही अनाज के स्टोर थे। गेहूं आई थी तो धूप लगवानी पड़ती है ना, केवल इस हिस्ट्री हाल की छत थी कि नीचे तो मट्टी थी तो सुखा नहीं सकते थे, तो ऊपर ही सुखानी थी, सुखवाई लेबर के द्वारा ऊपर भेजी, अभी साफ कर दी है। और पूरी साफ हो तब नीचे उतरे। तो बाबा ने क्या किया, सभी बच्चों को बोला चलो बच्चे गेहूं साफ करेंगे, बाबा खुद चल पड़े। बाबा जब जाएगा तो क्या बच्चे कोई रुकेंगे नीचे, सारे ऊपर पहुंच गए। चलो फिर इसके बाद बाबा ने क्या किया, जितने बच्चे थे तो थोड़े गिनती किया, मतलब 20-25 जो भी थे हम लोग, उस समय में अपने को भी बाबा ने काउंट किया उसमें, बच्चों की केवल गिनती नहीं की, खुद की भी की। और पूरे उसमें जेऊ फैली हुई थी तो एक लकड़ी उठाई बाबा ने और खड़े खड़े उतने हिस्से बना दिए, अपने अपने हिस्से की साफ करो। बाबा ने अपना भी हिस्सा रखा। हाँ, ऐसे चौकड़े चौकड़े बना दिए। अभी आप सोचो कितना ना उमंग से बाबा ने हंसते खेलते काम करा लिया, कितने बोरे पतरी साफ किए होंगे हम लोगों ने। फिर इसके बाद बाबा ने आम मंगाए कटवा के और अपने हाथ से सभी बच्चों को दिए। काम कर रहे हैं, आम बीच में मिल गया, खाओ बच्चे, खाओ खाओ खाओ। फिर क्या किया बाबा ने, थाली खाली ली और बाबा कहते छिलके डालो इसे। बाबा के हाथ में थाली है, अब आप सोचो कौन बच्चा डालेगा। बाबा कहे डालो। फिर किसी और बहन ने ली बाबा से थाली, तब सबने छिलके डाले। तो कहने का भाव ये कार्य भी बाबा कराते थे उमंग उल्लास के साथ, खुशी के साथ। एक बार की बात हुई, कुछ पानी की शॉर्टेज हो गई थी तो यहाँ जो कुआ है ना उसमें हैंडपंप था, तो हैंडपंप से निकालना था पानी। तो बाबा ने क्या किया, क्लास पूरा किया, यही स्त्री आदमी मुरली के बाद बच्चे ऐसे से प्रोग्राम दिया पानी का। बाबा ने बच्चियों से भी काम कराना था, ऐसे नहीं बोला कि बच्चियां करो, ये बच्चियां ये थोड़ी ना निकाल पाएंगी, इनकी तो कमर ऐसे ऐसे होंगी। सब ने बोला नहीं बाबा हम करेंगे। लाइन लग गई, लाइन से सबने दो 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 बाल्टियां भरी, पानी का काम पूरा हो गया। मैंने एक बाबा की युक्ति ऐसी थी जैसे कैरम खेलते हैं ना, तो इधर अगर गोटी लानी तो उधर मारो, अगर उधर से तो इधर से उल्टी मारो। ऐसे उमंग भरते थे। और एक बात बताऊं, उन दिनों में बर्तन पीतल के होते थे, खाना बनाने के बर्तन पीतल के थे, तो पीतल को कलई करनी पड़ती है नहीं तो सब्जी बिगड़ जाती है। हाँ जी, तो इसलिए पीतल की कलई करते थे। अभी तो वो काम पूरा हो गया क्योंकि दूसरे साधन आ गए। यज्ञ में पहले पीतल के बड़े बड़े बर्तन थे। तो दिल्ली से एक माता कलई लेके आई, वो ऐसी आती थी लंबी लंबी, उसको आता था। तो बाबा को बोला, बाबा मैं बर्तनों को कलई कर दूं। क्लास बाबा ने क्लास मेहमा की, देखो ये बच्ची ऐसे लेकर के आई है और बच्ची कहते मैं बर्तन को कलई करती हूँ, इन बच्चों में किसी में शौक थोड़ी है। जो वो सोचे हम भी सीखे, क्योंकि सोचेंगे अगर सीखेंगे तो करना पड़ेगा। अरे कितने खड़े हो गए, बाबा हम सीखेंगे हम सीखेंगे। मैं भी खड़ी हो गई थी, हम भी सीखे थे। अभी भी कहो अगर बर्तन में कर सकती हूँ कलई। मानो जो एक अच्छा काम करे बाबा उसका उल्लास कई गुना बढ़ा देता था। मैंने प्रोत्साहन देने की बाबा में बहुत अच्छी थी। बाबा मुरली चलाते थे ना तो लास्ट में गुड मॉर्निंग करते थे बाबा मुरली के बाद, मुरली में आता ही है तो हम सब सुन लेते थे, जवाब देने की सिस्टम नहीं थी तब। तो एक इतनी बच्ची थी छोटी, जैसे वो पीछे बैठी थी, इसी स्त्री हाल की बात है। तो जैसे ही बाबा ने गुड मॉर्निंग की, पीछे से एकदम बोलते बाबा गुड मॉर्निंग। छोटी बच्ची थी, बाबा ने कहा बच्ची देखो इस छोटी बच्ची में भी अक्कल है जो रिस्पॉन्ड करती है। बस उस दिन से सबने रिस्पर करना शुरू कर दिया। मतलब एक छोटा बच्चा भी अगर कोई ऐसा अच्छा कार्य करता है तो बाबा उसका उमंग कई गुना ज्यादा बढ़ाते थे। बाकी प्यार से तो बाबा इतना खिलाते थे। बाबा ने खास ये जो इंद्रप्रस्थ मकान है तभी नहीं था तो वहां बाबा ने मक्की के वो लगवाए थे, मक्की का भुट्टे आते ना वो, क्योंकि उन दिनों में अपने घर में बैलगाड़ी थी, कार एक भी नहीं थी। हम आते थे पार्टियां तो बैलगाड़ी से बस स्टैंड से सामान आता था और जाता था, और कमरा तो सिर पे कुली के द्वारा नहीं तो बैलगाड़ी में। और दूसरा ये जो मकान पत्थर का बनता था ना उस दिनों में तो चूना को घसते थे, बारीक होता था वो, बैल करते थे काम। तो बाबा ने वो भुट्टे लगवाए और कहा ये मक्की के जो भुट्टे हैं वो मेरे बच्चे खाएंगे, उसका जो घास है वो मेरे बैल खाएंगे, खास उसके लिए लगवाया। तो जैसे निकलते थे बाबा वहां झूला था बैठ जाते थे, जहां रतन दादी का ऑफिस है उसके सामने में, एक एक गरम गरम बन के आता बाबा अपने हाथ से बच्चों को खिलाते थे। कभी कहेगा बच्चे आओ मैं मक्खन माने खिलाता हूँ, इतनी छोटी छोटी मक्खन रोटी बनती थी, जो सीधा एक मुंह में जा सके उसके ऊपर मक्खन और चीनी पाउडर वो डाल के बाबा एक एक बच्चे को खिलाता था। इतने एक बाबा ने प्यार दिया और बच्चों ने एक शब्द भी कहा बाबा ये चीज हमें चाहिए, तुरंत हाजिर। एक बार ये झोपड़ी जहां है वहां गन्ने लगाए हुए थे तो एक कोई लंदन की बहन आई, उसने कहा बाबा लंदन में तो ये गन्ने नहीं मिलते। उसी समय बाबा ने माली को बुलाया, बच्चे गन्ने तोड़ के आओ, उसी समय अपने सामने लो बच्चे गन्ना चूसो। बच्चों की कहने की देर चीज हासिल, मैंने इतना प्यार। और एक बात और बताऊं बहुत बाबा की, क्योंकि जब पार्टी जाती थी प्रबंध तो मिल जाता था उस समय में ये था, और उसके बाद ट्रेनिंग क्लास बाबा ने बनाया था, नीचे का हिस्सा कंप्लीट हुआ था, ऊपर का स्लैप हो गया था बाबा के होते और दीवारें भी हो गई थी और प्लस्तर रह गया था, नीचे का कंप्लीट था। तो वहां पर पार्टीज रहती थी तो हमारी ड्यूटी होती थी रोज रात को, वो एक कटोरा सा होता था डंडी वाला, उसमें अंगार उसके पर वो हवन सामग्री डालते थे, पूरे कमरों में चक्कर लगाओ वो हमन सामग्री लेकर के खटिया के नीचे तक भी, ताकि कोई मच्छर ना रहे जो बच्चों को काटे। तो रोज मेरी ड्यूटी थी और उसके पीछे बाबा ने रात रानी लगवाई थी, तो जब भी पार्टियां बाबा चक्कर लगाता था खुद, खिड़की बंद है बच्चे खोलो खोलो देखो रात रानी की कश्मी आएगी, मानो बच्चों को मच्छर भी न काटे सुगंध भी आती रहे, क्योंकि बाबा कहते हैं मेरे बच्चे देवता बनने वाले हैं। तो बाबा जब भी पार्टी आई बाबा ने रात को चक्कर लगाना ही है कि बच्चों को प्रबंध ठीक मिला या नहीं मिला। पर कई बार हमने खुद देखा सर्दी के दिन होते थे या अबू में इतनी ठंडी होती, आने वालों को तो मालूम नहीं रहता था तो स्वेटर नहीं पहना होता था, तो बाबा जाता था देखता था किसके हाथ में स्वेटर नहीं है ठंड है, बाबा अपना उतार के दे देता था। बाबा नहीं चाहिए नहीं चाहिए नहीं बच्चे लो पहनो पहनो पहनो, कई बार बाबा ने अपना स्वेटर उतार के बच्चों को दिया। अब आप सोचो इतना प्यार करेगा कौन, जितना बाबा ने प्यार दिया उतना कौन देगा इस जगत में? है कोई और देने वाला ऐसा? लौकिक माँ बाप भी बच्चों का इतना ध्यान नहीं रखेंगे। ठीक है, बीमार हो गए दवाई दे देंगे, खाना दे देंगे, पर मन का ध्यान, इस रीति से ध्यान कहाँ दे पाते? फिर इसके बाद बाबा का पढ़ाई पर भी बहुत ध्यान। बच्चों की मुरली कभी मिस न हो, वो भी ध्यान रहता था। एक बार की बात है, हमारे बाबा को दांत में बहुत तकलीफ, डॉक्टर ने बोला बाबा एक दिन आप पूरा रेस्ट करो, बोलो नहीं। सुन लिया बाबा ने। सवेरे उठे, बैठ करके बाबा ने मुरली लिखी, लिख करके पूरी इतनी बड़ी लिखी, इतनी लिखी जब पूरा चार पेज छपा उसका पीछे हस्तलिखित मुरली। फिर बाबा क्लास में आ गए और दीदी ऐसे नीचे बैठा कर दी थी पहले उस समय में, बाद में दीदी सोफा पे शुरू किया। पहले मुरली बाबा चलाते थे, दीदी हो दादी हो से सामने बैठते थे फर्स्ट रो में। एक कदम आके दीदी की गोद में वो दिया, लो बच्ची अपना खजाना, हमारे सामने की बात है। और बोल के बाबा संदली पे वापस बैठ, और बैठ के फिर मुरली शुरू कर दी चलाना। जैसे चलाते थे उतना समय फिर तो रोज जो चार पेज की मुरली थी उस दिन हमको कितने पेज की मिल गई? आठ पेज की। चार पेज हस्त लेके, चार पेज बाबा ने मुरली चला दी। क्योंकि बाबा का ये था, बाबा अगर आज मुरली नहीं चलाएगा तो जो बच्चे दूर बैठे उनके संकल्प चलेंगे कि बाबा की आज तबियत ठीक नहीं है। बाबा नहीं चाहता था कोई बच्चे का संकल्प चले। मन कितनी भी शारीरिक तकलीफ हो, हमने देखा बाबा ने कभी मुरली मिस नहीं की चलाया। और बाकायदे हर दो दिन में पोस्ट रवाना हो जाती थी। एक बार क्यों ये पोस्ट रवाना करना दादा हमारे जमुना प्रसाद भाई की ड्यूटी थी, वो पैक करते थे और विश्व रतन दादा पोस्ट ऑफिस में लेके जाते थे। तो एक दिन कुछ ऐसा ज्यादा काम आ गया तो दीदी को उन्होंने बोला, प्रोग्राम दिया, दीदी अभी मुरली रवाना नहीं करता हूँ, शाम को पोस्ट रवाना करूंगा। दीदी ने बोला ठीक है। पर इतने में बाबा आए तो देखा कि पोस्ट की तो कुछ तैयारी नहीं दिख रही आज। आके दीदी को बोला, दीदी ऑफिस में बैठी थी, क्यों आज पोस्ट नहीं जा रही है? कहा दीदी शाम, बाबा शाम को भेजेंगे, ऐसा सा जमुना प्रसाद को काम है। कहा बच्ची बाबा की मुरली लेट नहीं जा सकती, ये बच्चों का खजाना है, अभी जाएगा। समय केवल 15 मिनट बचा है और इतनी सैकड़ों पोस्ट तैयार करनी है। मुझे याद है हरेक अपने काम का समय था, हरेक अपने सेवा में लगा हुआ था। बाबा ने चक्कर लगाया खुद, हम भी इधर ही बैठी थी, हम भी कुछ काम कर रहे थे अपने कमरे में, चक्कर लगा कि चलो बच्चे मुरली पैक करनी है। सब के सब पहुंच गए और 15 मिनट में पोस्ट तैयार हो गई और रवाना हुई। अब सोचो बाबा को, बच्चों को ज्ञान रत्नों का खजाना समय पर पहुंचे उसकी कितनी चिंता रहती थी। एक दिन तो क्या, आधा दिन भी यहाँ से लेट नहीं जाती थी मुरली। फिर उन्हीं दिनों में टेप नई नई निकली थी तो टेप मशीन में बाबा की मुरली हमारे चंद्रास दादा रिकॉर्ड करते थे। फिर जहाँ जहाँ सेंटरों पे मशीन होती थी पोस्ट से जाती थी, फिर हम लोग वहाँ सुनते थे, फिर वापस करते थे, दूसरे सेंटर पे जाते थे। तो इस तरह से मुरलियाँ लिखत में, पोस्ट में, फिर टेप के द्वारा भी हम लोग के पास पहुंचती थी। और बाबा का एक बाबा को हम पत्र लिखते थे, जो भी लिखे हर एक को बाबा जवाब जरूर अपने हाथ से देते थे। हमारी सोनीपत की माताएं बहुत बांधेली थी, वहां भाई ज्ञान में नहीं थे, सब माताएं थी, पर सब माताएं बांधेली तो इतनी लगन के साथ बाबा को पत्र लिखती थी। तो उन्होंने जब पत्र लिखा तो रंगीन कागज पे पत्र लिखा। देखो बाबा भावनाओं को कैसा जानता है। नहीं तो बाबा जो हम बच्चों को पत्र लिखते थे वही सफेद कागज और लाल पेंसिल से होता था। खास बाबा ने उनके लिए, सोनीपत वालों के लिए रंगीन कागज बुलाए। बच्चों ने रंगीन कागज पे प्यार से पत्र लिखा है, बाबा भी रंगीन पे लिखे। अब आप सोचे जब उनके पास पत्र पहुंचा, क्या नहीं उनको खुशी मिली होगी, क्या नहीं शक्ति मिली होगी। मनोहरी की दिल की भावनाओं को रखना, वो भी बाबा में बहुत बहुत कला थी। और भावनाओं की मैं बताऊं बात, एक छोटी बच्ची थी, इतनी छोटी, उसका बाबा से अति प्यार, तबियत भी ठीक नहीं थी बच्ची की, प्यार अति शांत मूर्त। वो क्या करती थी, बाबा के नाश्ते का समय जाके बाबा के कमरे में बैठ जाती थी, गद्दी पे चौकड़ी लगा के बैठ जाएगी, रोज जितने दिन भी आ रहेगी बाबा उसको फिर अपने साथ नाश्ता खिलाएगा, कभी तबियत के हिसाब से फ्रूट खिलाएगा। उसने बाबा के कमरे में रोज जाना और बाबा ने उसको रोज खिलाना। सारे घर में ढूंढो कहीं नहीं तो सब समझ जाओ बच्ची होंगी तो बाबा के कमरे में होगी और वहीं मिलती थी। पर उस बच्ची का भी इतना प्यार, जो जो चीज खा के जाती थी ना माँ को बोलती थी ये बाबा को भेजो, फिर वो भी भेजती थी। एक बार वो कोई पार्टी जा रही थी तो बाबा ने उस बच्ची के लिए गरम फ्रॉक भेजा, चांदी की कटोरी, चम्मच, टोली, वो बाबा ने भेजा। उधर बच्ची बाबा को याद कर रही है, उधर उसने रवाना कराया सामान कुछ, इधर बाबा ने कराया। और उस समय उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, पर जैसे बाबा का चीज गई क्या बच्ची की शक्ति मिली, वंडरफुल। उस वक्त वो पहना फ्रॉक, उसमें चम्मच कटोरी में खाया, बच्ची की तबीयत ठीक हो गई। बाद में तो काफी समय के बाद उसने शरीर छोड़ा, पर इतना प्यार पाया। मैंने ऐसा नहीं कि बाबा बड़ों को प्यार दे, छोटे बच्चों को भी उतना प्यार देता था जितना बड़ों को दे। दूसरी छोटी बच्ची थी, वो तो क्या करती थी, बाबा कमरे में नहीं है ना, खटिया के नीचे छिप जाती थी, चादर तो लंबी लंबी लगी रहती थी, तो जैसे बाबा आएगा अंदर से निकले हूं बाबा को डराती थी। जैसे छोटे बच्चे नहीं माँ बाप के साथ खेल करते हैं, बाबा उसको गले से लगाता था। बाबा सो भी जाएंगे ना, बाबा के पेट पे चढ़ जाएगी, बाबा गले लगा लेगा। तो जितना बाबा ने बड़ों का ध्यान रखा उतना बाबा ने बच्चों का ध्यान रखा, जितना तन का ध्यान रखा उतना बाबा ने मन का ध्यान रखा। बच्चे सीखे आगे बढ़े वो भी उतना बाबा ने ध्यान रखा। कुमारियां आती थी, क्या मुरली चलाता था बाबा। बाबा अगर कुमारी होता तो बाबा ये करता ये करता। बुजुर्ग आएगा तो वैसी वाणी, यूथ आएगा तो वैसी वाणी। और मैं एक मन की बात बताऊं, कितना ध्यान देता था। एक बार की घटना है, एक कोई बच्चा था जिसने कुछ गलती की थी। बाबा को समाचार था कि उसने गलती की है, पर वो मधुबन में आया तो बड़ों ने क्या सोचा दूसरों ने कि आया ना तो बाबा जरूर इनको इशारा देगा। बाबा ने बिल्कुल नहीं दिया, इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, साथ खिलाया, साथ खेलने को लगाया, घूमने ले गए, मन उमंग भर दिया। पर जो बाबा के आगे थे वो सोचे बाबा अभी बोलेगा, अभी बोलेगा, अभी बोलेगा, इतनी बड़ी गलती करके आया, नाम नहीं, और ही प्यार ज्यादा दिया। चला गया, उसके बाद पूछा, बाबा आपने तो उसको कुछ बोला नहीं। का बच्चे नहीं, बाबा बाप है, बाबा बच्चों का कल्याण चाहता है। भले बाबा को पता, बच्चा भी जानता है ना मैंने गलती की है। अगर आज अगर बाबा उसको सामने में कहता तो बच्चा हिम्मतहीन हो जाता। इसलिए बाबा ने उतना प्यार दिया ताकि वो यहां शक्ति भर के जाए। शक्ति भर के जाएगा ना तो अपने आप परिवर्तन कर लेगा। देखो, एक परिवर्तन करने की युक्ति शब्दों से नहीं सिखाया, प्यार से, ज्ञान से वो शक्ति भरे ताकि वो अपने आप परिवर्तन कर ले। जनरली हम लोग भी कोई भी क्या सोचेगा, इसने गलती कर, इसको सिखाना ही चाहिए, समझाना ही चाहिए, पर बाबा ने वो नहीं किया। तो कितनी एक बाबा की युक्ति थी, आप इस चीज को सोचो, कितना मन का ध्यान बाबा रखता था हर एक का। और कहीं गलती करो तो कान भी पकड़ता था बाबा, क्योंकि हर बच्चे की नब्ज देखता था बाबा, कैसे किसको सुधारना है, सुधारना है जरूर। एक बार की बात है, सर्दी के दिन थे, बाबा की हिस्सा सुधारी ना तो इसलिए ये बता रही। कपड़े हम सब अपने हाथ से धोते थे, धोना सुखाना और शाम को उतार लो भाई। तो एक दिन मुझे भूल गया, क्लास में बैठी थी, बता ना रिकॉर्ड बजाने की ड्यूटी थी, यहाँ याद आया बाबा बैठे मैं कैसे उठूंगी उतारने के लिए कपड़े। सोचा क्लास पूरा होगा मैं उतार लूंगी, उठी फिर भूल गई, जाके सो गई। ठंडी बहुत थी, सोने के बाद याद आया मैंने कपड़े नहीं उतारे, तो ठंड के मारे थोड़ी सुस्ती की, उतारा नहीं। सवेरे याद नहीं, क्लास में आ गई, गीत बजाना था, क्लास से उठी सीधी गई कपड़े उतारने, देखे तो कपड़े गायब है नहीं। आप सोचो लगाओ गड्ढा, फिर उससे पूछा, उससे पूछा तो पता लगा कि इशारा मिल गया है ना, ये बाबा का ही काम है। तो मेरे को किसी का नाम बोला, संतरी दादी थी का, उससे पूछा। मैं गई तो का बाबा के पास जाओ, गए बाबा के पास। मैं बाबा से डरती नहीं थी, ये बात पक्की है, डरती नहीं थी, चली जाती थी। तो जब मैं बाबा के पास गई, मैंने कहा बाबा मेरे कपड़े बच्चे कब डाले थे, बाबा कल डाले थे, बच्चे उतारे क्यों नहीं थे, बाबा ऐसे ऐसे हो गया था। बच्ची देखो, तुम देवता बन रही हो ना। देवता बनने वाले उनको कितना स्वच्छता से कपड़े पहनने चाहिए। सारा दिन पड़े रहे, हवा आई, तूफान आया, कपड़ों को मट्टी लगी, वो तो देवता बनने वाली बच्ची पहनेगी। अगर बच्ची गिर जाते थे दोबारा धोती, साबुन लगता, समय जाता, बच्ची सूख जाए उतार। मैंने कहा जी बाबा, अच्छा लो बच्ची दे दो कपड़े। तो एक सिखाने की युक्ति कितना प्यार से प्रेम से बाबा ने सिखा दिया। और भी कभी कोई बात होती थी, मुझे याद है बाबा बुला लेता था। हमारे मन में भी कोई बात है, हम बाबा के पास चले जाते थे। और बाबा के पास डायरेक्टली चले गए, बाबा को भी बहुत अच्छा लगता था। एक बार मनोहर दादी ने बाबा से पूछा, बाबा ये कैसी चलती है, कब बहुत अच्छी चलती है, कोई बात होती बाबा के पास आ जाती है। तो मुझे भी अंडर लाइन हो गया, इसका अर्थ है कि बाबा के पास ही जा रहा थी। कभी भी कोई बात आई सीधे बाबा के पास, हमारी भी कोई बात सुनेगा तो तुरंत बाबा बुला लेगा। एक बार कोई, जब बाद की बात है, मैं सेंटर पे थी तो कोई बात में मन भारी हो गया। तो हम तो इधर उधर जाते नहीं थे कहीं, तो मधुबन में आई थी तो मम्मा को सुना रही थी। तब ये सामने वाला जो रिसेप्शन है वो बन गया था, तो मम्मा से बात कर रही थी। तो मन भारी हो तो क्या होता है, आप सोच लो जरा क्या हुआ होगा मन भारी के कारण। सुनाते सुनाते हैं तो गंगा जबड़ा बह गई, किसी ने बाहर देख लिया, जाके बाबा को सुनाए कि ये बाबा के मम्मा के पास रो रही थी। शाम को मैं निकली, बाबा ने तुरंत बुलाया, बच्ची कमरे में आना। मैं गई, कहा बच्ची तुमने आज मम्मा के पास रोया? मैंने कहा जी बाबा। क्यों बच्ची, क्या था? मैंने कहा बाबा ऐसी ऐसी बात थी, मैं मम्मा को सुना रही थी, मेरे को रोना आ गया। मम्मा ने, बाबा ने देखा सच्चाई से जो की त्यो बात बता। अच्छा बच्ची जाओ जाओ। पर एक क्यों बच्चे ने रोया वो भी ध्यान रखा बाबा ने, मन बच्चे सदा खुश रहने चाहिए, उसके पीछे भाव ये था, प्रसन्न रहे, हंसते रहे, खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे। तो ऐसे बाबा ने बड़े प्यार की पालना हमारे को दी। तो कितने वो दिन, आप सोचो जब बैठते होंगे कितने दिन वो याद आते होंगे, बाबा की प्यार की पालना के, मम्मा की पालना ली, बाबा के लिए, दीदी के लिए, दादी के लिए। पर दीदी ने दादी ने पूरा सखी स्नेह दिया। दीदी हमेशा मेरी पुरातन सखी, मैं जब बाहर भी चली गई पत्र में हमेशा दीदी ये लिखती थी, मेरी पुरातन सखी। और दादी के समय में जब हम मधुबन में आए तो दादी के पास हमारी तीन कन्याएं दादी की सेवा में रही है, अभी भी है वहां दादी कॉटेज में। वो पूछती थी, दादी कौन आई है? तेरी टीचर। दादी आपकी कौन है? मेरी सखी। ये दादी की हमेशा एक्शन रही, पर केवल शब्दों में नहीं कहा है, सखी स्नेह दादी ने भी दिया, सखी स्नेह दीदी ने भी दिया, बाबा ने तो दिया ही दिया। और एक बार दोपहर का समय था, बाबा की वो सीन मुझे याद आती है, बाबा लेते हुए थे, मैं बाबा के सामने से उसी खटिया पे बाबा के आगे से बैठ गई। बाबा मुझे दृष्टि देने लगे लेते लेते, और इतने में मनोहर दादी पहुंच गई। वो ऐसे बाबा के सिर के पास खड़ी हो गई। कितनी देर बाबा दृष्टि देते रहे, वो सीन मुझे नहीं भूलता बाबा का। दृष्टि देते देते फिर एकदम ऐसे दादी की तरफ देखा, कहा ये बच्ची बहुत भाग्यशाली है। ये वर्ड जैसे कोई रीड कर रहा है, मैंने कहा ना भृगु ऋषि मेरे भाग्य को रीड कर रहा है। करते करते ये शब्द बोले, मैं तो कहूंगी वाह बाबा वाह, किस शब्दों में बाबा को हम थैंक्स दें जो बाबा ने इतनी प्यार की पालना दी और इतना आगे बढ़ाया। बस आगे बढ़े हैं बड़ों की दृष्टि से, बड़ों के प्यार से, बड़ों की दुआओं से। भले मैं वहां रही हूँ नागपुर, परंतु सदा बड़ों की छत्र छाया का अनुभव किया मैंने तो। क्योंकि मन की एक बात सदा पक्की रखी, जो भी बात हो जो की त्यों बड़ों को बतानी है, कभी बड़ों से छिपाई नहीं, कभी बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताई, ना बढ़ाना ना छिपाना, जो है जैसे है बड़ों के आगे। तो उतने ही बड़ों का विश्वास रहा है। मैं लास्ट एक दादी की बात बताऊंगी, समय हो रहा है मैं देख रही हूँ। इसी हाल की बात है, हम 50 साल टीचर्स थी, दीदी दादी के साथ भोजन था। इसी हाल में दीदी दादी यहाँ बैठी थी, दीदी दादी मनोहर दादी, मतलब दादी ऐसे सामने लाइन में थी इसी जगह पे, हम ऐसे तीन साइड में बाकी बहने थी। भोजन पूरा हुआ, थाली अभी वहीं थी हमारी, सब बैठे थे। तो मनोहर दादी ने दादी से पूछा, दादी इन सब की विशेषताओं को जानते हैं? दादी ने कहा दादी बताओ। पर कमाल थी दादी की, नहीं तो हर एक अपने अपने सेंटरों पे है ना, पूरे समय कोई दादी के साथ थोड़ी रह रहे थे। परंतु दादी ने जैसे लाइन से बैठे थे ना, फटाफट एक एक मिनट में सब की एक एक विशेषता जो मेन थी वो बता दी। जनरली क्या होता है, किसकी विशेषता बताना दो बार सोचना पड़ता है, पर दादी के पास इतना इमर्ज थी, साथ की दीदी दादी ने विशेषता बता दी और हर एक को लगा कि बिल्कुल एक्यूरेट बताई। तो कितना एक हमारे गुणों को, हमारी विशेषताओं को बड़ों ने देखा और उस विशेषताओं को आगे बढ़ाया। यही कारण है हमारी एक उन्नति का। तब मैं कहती बड़ों की दुआएं। ओम शांति।